सूची पत्र भूमिका दो पृष्ठ पांच सीमंतनी उपदेश और पंडिता रमाबाई पृष्ठ नौ सीमंतनी उपदेश की लेखिका कौन थी पृष्ठ पंद्रह भूमिका एक पृष्ठ इक्कीस नंबर मजमून अर्थात विषय एक स्तुति पृष्ठ उनतालीस दो खुदा से मेरी फरियाद पृष्ठ चालीस तीन आर्य स्त्रीमुखी प्रार्थना पृष्ठ इकतालीस चार शुक्र पृष्ठ तिरालीस पाँच निवेदन पृष्ठ पैंतालीस छह हिंदी औरतों की हालत पृष्ठ छियालीस सात जेवर का शौक पृष्ठ सैतालीस क पहले दर्जे की अमीर अशराफ औरतों की बातचीत पृष्ठ 48 ख दूसरे दर्जे वालियों की बातचीत पृष्ठ 48 ग तीसरे दर्जे वालियों की बातचीत पृष्ठ 49 घ अब जेवर का हाल सुनिए पृष्ठ 49 अंग पहले आम जेवर का जिक्र जो खाम खा मजहब की तौर पर बनता है पृष्ठ 50 च दूसरा आम जेवर पृष्ठ 53 8 जूती पृष्ठ 58 9 हिंदी औरतों की पोशाक पृष्ठ 59 क पंजाबी औरतों की पोशाक पृष्ठ 60 ख रंगीन कपड़ा पृष्ठ 60 ग नजाशत पृष्ठ 61 घ कपड़ा पृष्ठ 61 10 प्राचीन औरतों की हालत से आजकल की औरतों की निस्बत पृष्ठ 63 11 औरतों के खराब होने के सबब पृष्ठ 65 12 बदमाशों की हालत पृष्ठ 66 13 मुसीबतें पृष्ठ 70 14 जवाब एक औरत का पृष्ठ 71 15 ए नेक वक्त अहिंदनियों पृष्ठ 73 16 विधवा की दूसरी शादी पृष्ठ 76 17 एक निहायत दर्दनाक विधवा औरत का हाल पृष्ठ 80 18 पुरुष की हर रोज की मार खाने से रांड रहना अच्छा है पृष्ठ 84 19 आजकल औरतों की गुजरान पृष्ठ 86 20 रांडों पर सितम पृष्ठ 89 21 औलाद की ख्वाहिश पृष्ठ 98 क एक औलाद की चाहने वाली का हाल पृष्ठ 99 22 पतिव्रता धर्म पृष्ठ 105 23 कुछ कथा का हाल लिखा जाता है पृष्ठ 108 विशेष पृष्ठ क मूल पुस्तक के पहले पृष्ठ की फोटो प्रति पृष्ठ 34 ख मूल पुस्तक के पांचवें पृष्ठ की फोटो प्रति पृष्ठ 35 सीमंतनी उपदेश यह किताब एक हिंदू औरत की तसनीफ है तवा कराई मुंशी कन्हैया लाल साहिब अलगधारी ने औरतों के वास्ते बेहतर समझ के 300 कापी मतवक्ष धर्म सहायक प्रेस मुंशी माधव स्वरूप में बमकाम ले दिया ने तबाह हुई लागत कीमत कुछ हो मुस्तहब कोम्फस मिलेगी तहरीर बतरीक 1 फरवरी सन 1882 क मूल पुस्तक के पहले पृष्ठ की फोटो प्रति सीमंतनी उपदेश 5 रक्षार्थियों स्त्रियों की प्रार्थना हे जगत पिता क्या तूने हमको पैदा नहीं किया क्या हमारा पैदा करने वाला कोई और खुदा है लोगों ने तेरा नाम मर्द करार दिया इसलिए तू भी हिंदियों की तरह बेरहम बन गया है अगर तुझको हमारी यही हालत मंजूर थी तो हमारी पैदाइश किसी और तरह से करता जिससे हमको भी तसल्ली होती और मजलूमों की फरियाद तो दुनिया की अदालत में भी सुनी जाती है क्या तूने हम मजलूमों के लश्कर को देखकर अपनी अदालत का दरवाज़ा बंद कर लिया है हे परमात्मा अपने दया सिंधु नाम का ख्याल करके हम पर दया कर क्या तेरी दया का समुद्र हमारे जले दिल के आहों से सूख गया है या हिंदियों की जुला की आग से जले दिल को जिस अक्षत से तू ठंडा करता है, क्या वहाँ भी हमारा हिस्सा हिंदियों ने चुरा लिया है? हे करुणामय पिता, निकालो हमको, हम जहालत के अंधेरे कुएं में जालमों के हाथ से गिरी अनाथ की मानिंद प्रकार रही है। हे प्रभु, हमारी इस फरियाद को भी सुन के बजाय निकालने के और गहरे में डुबो देते हैं। अब हम में इस कदर शक्ति या उठाने की ताकत नहीं है। हम ऐसे कईयों ने इसी जुल्म से बचने को अपनी आत्मा का घात किया है और कर रही हैं। हे जगत नाथ, तुझसे यही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान से जहालत का पर्दा उठा ले, जिससे अभी इंसान को इंसान के ख मूल पुस्तक के 5वें पृष्ठ की फोटो प्रति। सीमंतनी उपदेश नंबर 1, स्तुति पृष्ठ 39। इस दुनिया में 2 दिन गुजारा है, अब नहीं यहाँ किसी का इजारा है। अब तेरे तक अक्ल को रसाई नहीं, इसी जा पर इंसान हारा है। अब जो दुनिया में आवे तेरी याद में, जो दुनिया से जावे तेरी याद में, न निकले जवां से कोई और बात, हर एक हर्फ निकले तेरी याद में, न भूले से आवे किसी का ख्याल, जो हो दिल की ख्वाहिश तेरी याद में, न भूलूं कभी तुझको दुनिया में मैं, हर एक दम जो गुजरे तेरी याद में, न हरगिज हो मुझसे कोई फैल बद, हो सब काम मेरे तेरी याद में, अब है दिल की यह आरजू ये खुदा, मेरी जान जावे तेरी याद में। नंबर 2, खुदा से मेरी फरियाद। दुनिया में हम दुखी हैं, हमारी खबर तू ले, दुख दर्द से छुटा हमें एक बार खबर ले, दुनिया में कोई हमदम न हमको पड़ा नजर, तेरे सिवा कोई नहीं दिलदार खबर ले, तुझ बिन कोई नहीं है दुनिया में मददगार, ऐ जाने जहां हमदम हुआ दम ख्वार खबर ले, अब दर पे तेरे आ पड़े दुनिया को छोड़ हम, तेरे सिवा कोई नहीं दरबार खबर ले, अब सहते सहते जुल्म के हालत हुई है यह, जुबा में नहीं ताकते गुप्तार खबर ले, तेरिया चरित्र सुन के शोला भड़क उठा, इस बात से हूँ बहुत शर्मसार खबर ले, इस कैद में हम जिंदगी काटेंगी कब तलक, रहबर कोई नहीं ऐ रब तू खबर ले, मकर ओ फरेब मर्दों ने सताया हमें बहुत, तू बन के दुश्मनों का खूंखार खबर ले, हालत है दर्दनाक जरा गौर से सुनो, बरस हो चुके इस हालत में 10,000 खबर ले। नंबर 3, आर स्त्रियों की प्रार्थना पृष्ठ 41। हे परमेश्वर, हमारी फरियाद को सुन, हम मजलूमों की फरियाद पर किसी ने ध्यान नहीं किया, हमने इस हिंदुस्तान में चारों तरफ पुकार पुकार और रो रो के हरेक के सामने फरियाद की, लेकिन किसी ने हमारे बावेले पर कान न धरे, न पलक उठा के देखा, हमने खूब गौर से इस दुनिया में देख लिया, मगर सिवा तेरे हमारी बेकसी बेबसी बेकदरी बेइज्जती की फरियाद को सुनने वाला कोई नज़र न आया, तू गौर से हमारी फरियाद को सुन, मुद्दत से हिंदियों के दिमाग में जहालत की अंधेरी चल रही है, उससे जुल्म की गर्द उड़ उड़ कर हमारे ऊपर पड़ती है, जैसे कोई मकान बहुत देर तक गर्द पड़ने से दब जाता है, उसी माफिक हमारी हालत है, हम निकलने की ताकत नहीं रखती हैं, जैसे गन्ने का रस निकाल लेने से छिलका रह जाता है, वैसी ही हमारी हालत है। हे अंतर्यामी परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम बगैर जाने अपराध के अपराध करती हैं, अब क्षमा करके हमें भी वह ताकत दे, जिससे हम इस जहालत और जुल्म की तारीकी से निकल के दुनिया का कुछ तमाशा देखें। हे पिता, हमें कब इस जेल खाने से निकाल के आज़ाद करेगा? हे प्रभु, हमको कौन से अपराध के दंड में इस बंदी खाने में पैदा किया है? तेरे दरबार में हमेशा इंसाफ ही होता है, लेकिन इन जन्म दुखियों के वास्ते कैसी बेइंसाफी है, अपराध कोई करे दंड हमें मिले, काश कि हमसे गुनाह भी हुआ तो भी माफ कर दे, हम नहीं जानती हैं कि गुनाह या अपराध किसको कहते हैं। बस इसका दंड भी उन्हीं को मिलना चाहिए जो हमें गुनाहों या अपराधों से आगाह नहीं करते हैं। हे अंतर्यामी, हमारा भी नाम उसी फहरिस्त में लिख ले जिसमें पागल, शराबी, बच्चे और हैवान, बेवकूफ, जाहिल लिखे हैं। जैसे इनके गुनाह अपराध में नहीं, वैसे ही हमारे ख्याल करने चाहिए। हमसे वह अच्छे हैं जो इस दुनिया में जन्म भर को कैद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली उम्र में तो दुनिया को देख लिया है। हम तो एक दिन बल्कि ख्वाब में भी यह ख्याल नहीं कर सकती। जो चीज़ देखी ही नहीं, उसका ख्याल भी नहीं हो सकता। बस हम नहीं जानती कि दुनिया क्या चीज़ है, जहान किसको कहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी कैसी शक्ल है। जब हम कारण को नहीं देख सकती, तब कर्ता का ख्याल क्यों कर हो सकता है। ख्वादा, लोग तेरी सनअत को देख के तुझे कुछ पहचानते हैं। हम जहालत की तारीकी में फंसे हैं, तुझे क्यों कर पहचाने। बस हम नहीं जानती कि खुदा तू ही है या कोई और है, और तेरी कैसी शक्ल है, कहाँ रहता है। इन्हीं हिंदियों की जबानी सुना है कि परमेश्वर मजलूमों की दस्तगीरी करता है, अगरचे तू सभी की खबरगीरी करता है, मगर जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसकी रक्षा तू ही करता है। बस अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हमारी भी तू रक्षा कर कि हम सिवाय चार दीवारी मकान के और कुछ नहीं देखती। और हम चाहे इसी को तमाम दुनिया ख्याल करे, चाहे इसी को हिंदुस्तान समझे, इसी जेलखाने में पैदा हुई हैं और इसी में मर जाएंगी। हे जगत पिता, क्या तूने हमको पैदा नहीं किया? क्या हमारा पैदा करने वाला कोई और खुदा है? लोगों ने तेरा नाम मर्द करार दिया, इसलिए तू भी हिंदियों की तरह बेरहम बन गया है। अगर तुझको हमारी यही हालत मंजूर थी, तो हमारी पैदाइश किसी और तरह से करता, जिससे हमको भी तसल्ली होती और मजलूमों की फरियाद तो दुनिया की अदालत में भी सुनी जाती है। क्या तूने हम मजलूमों के लश्कर को देखकर अपनी अदालत का दरवाज़ा बंद कर लिया है? हे परमात्मा, अपने दया सिंधु नाम का ख्याल करके हम पर दया कर। क्या तेरी दया का समुद्र हमारे जले दिल की आहों से सूख गया है, या हिंदियों की जुल्म की आग से जले दिल को जिस अमृत से तू ठंडा करता है, क्या वहां भी हमारा हिस्सा हिंदियों ने चुरा लिया है? हे करुणामय पिता, निकालो हमको। हम जहालत के अंधेरे कुएं में जालिमों के हाथ से गिरी अनाथ की मानिंद पुकार रही हैं। हे प्रभु, हमारी इस फरियाद को भी सुन के बजाय निकालने के और गहरे में डुबो देते हैं। अब हम में इस कद्र शक्तियाँ उठाने की ताकत नहीं है। हम में से कईयों ने इसी जुल्म से बचने को अपनी आत्मा का घात किया है और कर रही हैं। हे जगतनाथ, तुझसे यही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान से जहालत का पर्दा उठा ले, जिससे अभी इंसान को इंसान की नज़र से देखें और अपनी जिंस से नेक सलूक करें, जिससे हमारी ज़िंदगी व्यर्थ न जावे, हम भी कोई दिन आराम से गुजारें। अब हमें इस दुनिया में सिवा तेरे किसी से उम्मीद नहीं जो इस विपद सागर से हमें पार उतारें। अब हम तुझसे बार बार यही प्रार्थना करती हैं कि इस अविद्या के घोर सागर से निकाल ले। नंबर 4, शुक्र, पृष्ठ 43। जो परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है और उस अपार प्रभु की कृपा का किसी ने अंत नहीं पाया, हमारी इतनी बुद्धि नहीं जो उसकी असंख्य दया का धन्यवाद करें। रात दिन दुष्टों, महात्माओं और पशुओं पर एक सम दया प्रकाश करने वाले ऐसे परमपिता के चरणों में हमारा बार बार धन्यवाद हो। जब जब दुष्ट बहुत हुए, तब तब उसने लोगों के दिलों में विद्या का प्रकाश कर अपनी सृष्टि की रक्षा की और बहुत ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा लोगों में सत्य का उपदेश किया। वैसे ही अब भी अपने प्यारे हिंदुस्तान को जहालत के घोर समुद्र में डूबा जान विद्या का प्रकाश करने को बहुत ऋषि मुनियों को भेजा है। हजार शुक्र की उनके उपदेश द्वारा चौथाई हिंदुस्तान अंधकार की गुफा से निकलकर रोशन घर में बैठा है, और उम्मीद है कि कोई दिन को विद्या के प्रभाव से तमाम हिंदुस्तान सूर्य की तरह रोशन हो जाएगा। परंतु थोड़े हैं ऐसे पुरुष जिन्होंने इन जन्म दुखियों पर आंख उठा के भी देखा हो, तमाम हिंदुस्तान में तलाश करने से शायद 100-50 ही निकलेंगे जो स्त्रियों को भी इंसान जानते हैं। यह पुराना धर्म है और आम कायदा भी है कि जो किसी समाज को सत्य उपदेश करता है या उनकी तरफदारी या किसी की रक्षा या जिसको किसी से कुछ नफा पहुंचता है या जो अपने चेलों के खुश करने को सत्य को जानकर भी झूठा उपदेश करता है, लोग उसे अवतार मानते हैं। जैसे ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय को माना, परशुराम को ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों को हिंदुस्तानियों ने, ईसा को अंग्रेजों ने, मोहम्मद को मुसलमानों ने। जैसे इन्होंने अपने फरीक की निजात की कोशिश की थी, वैसे ही आजकल बहुत दानिशमंद तरद्दुद करते हैं जो मस्तूरात नाकर्दा गुनाह काले पानी की सजा के बराबर हुई है, उनकी रिहाई करें। यह पुराना धर्म है और आम कायदा भी है कि जो किसी समाज को सत्य उपदेश करता है या उनकी तरफदारी या किसी की रक्षा या जिसको किसी से कुछ नफा पहुंचता है या जो अपने चेलों के खुश करने को सत्य को जानकर भी झूठा उपदेश करता है, लोग उसे अवतार मानते हैं। जैसे ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय को माना, परशुराम को ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों को हिंदुस्तानियों ने, ईसा को अंग्रेजों ने, मोहम्मद को मुसलमानों ने। जैसे इन्होंने अपने फरीक की निजात की कोशिश की थी, वैसे ही आजकल बहुत दानिशमंद तरद्दुद करते हैं कि जो मस्तूरात नाकर्दा गुनाह काले पानी की सजा के बराबर हुई हैं, उनकी रिहाई करें। तमाम हिंदुस्तान की स्त्रियों को चाहिए कि उनका शुक्र अदा किया करें, बल्कि उनको बराए खुद अवतार माने, जिनका मैं नाम लिखती हूँ। इनको परमेश्वर ने हमारे उद्धार को अवतार के तुल्य बनाया है। पहला, मुंशी कन्हैया लाल अलगधारी, जिसका एक लफ्ज भी इंसाफ से खाली नहीं, बहुत किताबें और रिसाले लिखे, कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें इन कैदनों की रिहाई की दलील नहीं। दूसरा, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, एडिटर बरादर हिंद, जिसका रिसाला इसी कोशिश में निकलता है, हर एक फिकरा इस रिसाले का औरतों की तालीम रागीब करता है। तीसरा, राय नोबिन चंद जी, जिनकी कोशिश से बहुत औरतों ने कुछ विद्या का नाम जाना है और बहुत किताबें हैं जो इन्होंने स्त्रियों के लिए लिखी हैं। चौथा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके उपदेश से तमाम हिंदुस्तान में विद्या का चर्चा हो रहा है, हर जगह आर्य समाज कायम हुई है और हमको उम्मीद है कि किसी दिन हमारे मुकदमे भी इंसाफ करेंगे। इन लोगों ने बहुत तरह से साबित किया है कि औरतों को भी इंसाफ समझना चाहिए, इंसान समझना चाहिए। इनको हैवानियत के रुतबे से निकाल इंसानियत का खिताब देना चाहिए। हरचंद इन्होंने वकालत का ढोल इंसाफ की लकड़ी से इनके कानों पर खूब पीटा। जैसे पत्थर में आवाज़ असर नहीं करती, वैसे हिंदियों के दिमाग में कौमी हमदर्दी ने जरा भी असर नहीं किया। जैसे किसी ज़माने में ब्रह्मा के वर से कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 1 दिन जागता था, वैसे ही हिंदुस्तानी ब्राह्मणों के उपदेश से जन्म से लेकर मरण तक इसी गफलत की नींद में हमारी तरफ से सोए पड़े हैं। इन लोगों के बहुत बावैला करने से जरा कुलबुला उठते हैं, फिर उसी गफलत की नींद में सो जाते हैं। अगर कहो कि हिंदुस्तानियों ने विद्या में बहुत तरक्की की है और बहुत इल्म हासिल किया है, बेशक माना, फिर हमें क्या एक के खाना खाने से दूसरे का पेट नहीं भरता है? हमारी तरफ से तो वही हालत है जो 1000 बरस पेशतर थी। नंबर 5, निवेदन, पृष्ठ 45। जो आदमी जेलखाने में पैदा हुआ हो या जिसका बाप दादा उसी में कदीम से रहता हो, वह उसी जेलखाने को बहिष्ठ समझता है। अगर कोई उससे कहे कि यह जेलखाना है या उसकी बुराइयां दिखावे, तो वह यह जवाब देता है, हमारे बाप दादा इसी में रहते आए हैं, क्या उन्हें अक्ल न थी? हम कभी इसको न छोड़ेंगे। ऐसों के सामने जब इस जेलखाने की बुराई की जावे, वे कब सुनते हैं? सच है, जो बच्चा कफस में ही पैदा हो, वह जंगल की सरसब्ज ताजा हवा की खूबियां क्या जाने। बेशक पहले जंगल की हवा उसे बुरी मालूम होगी, मगर जब वह इस हवा में आज़ाद फिरने को उस पिंजरे में बंद रहने से निस्वत देता है, तब कहता है, आहा, मैं पहले किस मुसीबत में था, अब मैं कैसे आराम में हूँ। फिर वह जब किसी अपने भाई को पिंजरे में बंद देखता है, तब बड़ा अफसोस करता है। बेशक पहले हमारी हिंदी बहनों को बुरा मालूम होगा, मगर जरा गौर को दिल में जगा देंगी, तब खुद मालूम कर लेंगी कि हम पर किस कदर मुसीबत है और हम पर कितना जुल्म किया जाता है। हम कैसे बेजान की माफी सहारती हैं, हम कब से इस जेलखाने में बंद की गई हैं। अब हमको खुद इस जेलखाने से निकलने की तदबीर करनी चाहिए। बस मैं तमाम अपनी हिंदनी बहनों से दरख्वास्त अर्ज करती हूँ कि कोई लफ्ज़ आपकी दीर शक्ति का मेरी जबान से निकल जावे तो माफ़ करें। नंबर 6, हिंदी औरतों की हालत, पृष्ठ 46। ऐ हिंद की निस्वान उठो, खूब सो चुकी, दुनिया में इज्जत आबरू थी सब तो खो चुकी, अक्ल और तुम्हारी ताकत जाया हुई तमाम, दुनिया में जो ना होना था वह सब तो हो चुकी, शक्ल और तुम्हारी वजह बिगड़ी है यहाँ तलक, तुम हबशनों के नाम से मशहूर हो चुकी, खुदगर्ज रयाकारों ने क्या क्या धरे हैं नाम, दुनिया में बेवकूफ और बेअक्ल हो चुकी, इज्जत तुम्हारी खाक में मिली है यहाँ तलक, तुम हिंदियों के पाँव की पैजार हो चुकी, हमदर्दियाँ तुम्हारी हरगिज नहीं इन्हें, इन दुश्मनों की जान को तुम खूब रो चुकी, जुल्म ओ जफा से इनकी तुमको नहीं खबर, शहबत परस्त नाम से भी ख्वार हो चुकी, अब खोल आंखें अपनी दुनिया को देखो तुम, लाखों तुम्हारी हजों में पुस्तक हैं छप चुकी। नंबर 7, जेवर का शौक, पृष्ठ 47। जेवर की बराबर स्त्रियों को दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं, बाप भाई खाबिंद लड़का किसी का इतना मोह नहीं जितना जेवर का है। अक्सर छोटी उम्र में लड़कियां जेवर के नव मयसर होने से पत्ते घास का जेवर बनाकर पहना करती हैं और हमेशा माँ बाप से जेवर ही की फरमाइश किया करती हैं। लिखना पढ़ना तो लड़कियों को रिवाज ही नहीं, न कोई और काम सिखाया जाता है, बस रात दिन जेवर के फिक्र में रहती हैं, कब हमारी शादी हो जो जेवर पहनने को मिले। जब शादी होती है अगर उनकी खातिर ख्वाह जेवर मिला तो खैर, नहीं हमेशा ससुराल वालों से नाराज रहती हैं। जेवर का भी कुछ शुमार नहीं, जितना मिले उसको थोड़ा ही जानती हैं। जैसे हिंदुस्तानी कभी बदफैलों से तृप्त नहीं होते, वैसे ही यह कभी जेवर से तृप्त नहीं होती, बस हर वक्त खाविंद को यह ताने दिया करती हैं, क्या तुमने मुझे 9 लाख का हार पहना दिया है। बड़ी से बड़ी लड़ाई पहले पहल औरत खाविंद में यहाँ से शुरू होती है और कई औरतों ने इसी जेवर के पीछे अपने खाविंदों को मार दिया है। एक मिसाल औरतों में मशहूर है जिससे इनके जेवर का शौक जाहिर होता है। एक हिंदी ने अपने बेटे की बहू से सिल उठाने को कहा, बहू ने भारी सिल देखकर उठाने से इनकार किया। ससुर ने उसी सिल को सोने में मढ़ाकर तागे में पिरोकर बहू से कहा, यह सोने की चौकी तुम्हारे लिए बनवाई है। बहू ने बड़ी खुशी से पहन ली और जरा भी बोझ न मालूम हुआ, और जेवर भी अक्सर इन्हीं के नाम से मशहूर है। औरतों का वक्त इसी में खर्च होता है, विवाह शादियों में जहाँ दो चार बैठती हैं वहाँ यही सुनने में आता है, हमारे पास यह नहीं, हमारे पास वह नहीं। औरतें खूब जेवर पहन पहन के जाती हैं, जिनको मांगा भी नहीं मिलता वे पीतल कांसा राख का पहनती हैं, और जिनको यह भी नहीं मिलता वे कहीं जाती ही नहीं, बहुत जेवर वाली आगे बैठती हैं और उनके इज्जत भी बहुत की जाती है, उससे कम उनके पीछे, इनसे भी कम इनके पीछे, जिन पर बहुत ही थोड़ा होता है वे सबके पीछे कोने में बैठती हैं। क, पहले दर्जे की अमीर अशराफ औरतों की बातचीत। सवाल, अजी आपकी नथ की जंजीर बहुत अच्छी बनी है। जवाब, हाँ मैंने बड़ी मुश्किल से बनवाई है। सवाल, तुम्हारे सिर की बंदी बहुत खूबसूरत है, कहाँ की बनी है, हम भी ऐसी बनवाएंगे। जवाब, यह यूं ही नहीं बनी है, इसके पीछे तो मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया। तब बनके आई। सवाल, अजी आपका हार तो बहुत ही उम्दा है। जवाब, यह हार तो बड़ी तकलीफों से बना है, इसके पीछे कई दफा मार खाई, मारे मार के 3 महीने तक बीमार रही, तब इस हार की सूरत देखी। सवाल, तुम्हारे कर्णफूल बहुत ही अच्छे बने हैं और ठोस भी खूब ही बने हैं, शायद किसी विलायती बोतल के डाट का नमूना होगा। जवाब, वाह जी, यह तो बड़े दुखों से मैसर हुए हैं, इनके पीछे मेरे खाविंद ने सैकड़ों बुरी भली कही, पर मैंने बनवा लेने के बाद ही चैन लेने दिया। सवाल, तुम्हारे पाँव की संकल क्या ही खूबसूरत है, यह कहाँ से बनवाई है? जवाब, मेरा खाविंद कम सीरियट का गुमाश्ता है, किसी हाथी के पाँव की संकल का नमूना दिया था। सवाल, अजी आपके हाथों के कड़े बहुत उम्दा बने हैं। जवाब, हाँ मेरा खाविंद जेलखाने का दरोगा है, किसी कैदी के हाथ की हथकड़ी का नमूना देकर बनवाए हैं। ख, दूसरे दर्जे वालियों की बातचीत। सवाल, यह अनंत के कल से तुमने कब बनवाए, आगे तो तुम्हारे पास न थे? जवाब, बहन क्या बताऊँ, इनके पीछे तो मैंने कितनी मार खाई, पर मैंने बनवा के कल लेने दी। सवाल, यह दुगदुगी कब बनी? जवाब, इसका हाल कुछ न पूछो, 1.5 महीना हुआ घर में लड़ाई पड़े और अब तक बोलचाल नहीं, 3 दिन से मैंने रोटी न खाई और उनके पास खर्च न था, लाचार हो 25 रुपये कर्ज लाए, तब यह दुगदुगी बनी है। सवाल, यह बाजरे की धड़त के छल्ले कहाँ से मारे? जवाब, वह छल्ले तो बड़े छलबल से बने हैं, घर का खर्च तो तुम जानती ही हो, कभी कौड़ी नहीं बचती, बल्कि हर महीने में 2-4 का कर्जा ही रहता है, बस मैंने 1 महीना तंगी कर घी न आने दिया, उन घी के रुपयों के यह छल्ले बनवाए। ग, तीसरे दर्जे वालियों की बातचीत। सवाल, हे जी, तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ गहना नहीं बनाया, शायद तुम्हारा खाविंद भी तुम्हें कुछ प्यार नहीं करता, तुम्हारा खाविंद बड़ा ही नालायक है, क्या इनको 10-20 रुपये कर्ज भी नहीं मिलते? चाहे बीबी कपड़ा न हो, पर हाथ कान का ढकना तो बहू बेटी को जरूर ही चाहिए, खाली कान तो बहुत ही बुरे लगते हैं, 4 पैसे की पीतल की बालियां भी मंगवा लो, रीते गले तो पानी पीना भी धर्म नहीं, काला पीला डोरा ही गले में बांध लो। जवाब, नीचा मुंह करके आंखों में आंसू भर के एक आह खींच कर, राम राम, हमने दुनिया में आकर क्या देखा है, देखो न तो ताता खाया न राता पहना, हमें तो परमेश्वर ने दुख ही भोगने को पैदा किया है, और जब से इन कमबख्तों के घर में विवाहे गए कभी गहने कपड़े में आग लगती न देखी, मैंने कई दफा कहा कि एक दिन घर का खर्च बंद करो, मुझे 4 पैसे की बालियां मंगा दे, भला कहाँ इतना सब्र, सुनते ही मुझे टका सा जवाब दिया कि गहने कपड़े बिना आदमी जी सकता है, रोटी बिना नहीं जी सकता, इसी बात पर मैं कितनी रोई और कई दिन तक रोटी न खाई, और अब तक मेरा मन किसी से बात करने को नहीं चाहता, हमारी इतनी किस्मत कहाँ जो गहने का मुंह देखे, हम तो जलते आए और जलते ही चली जाएंगी, ऐसे ही किसी दिन दम निकल जाएगा, हमारे नसीबों में गहना कहाँ, मैं जब कभी विवाह शादियों में भी गई गई हमेशा गहने का ही जिक्र सुना। घ, अब जेवर का हाल सुनिए। सिर पर कई तरह के जेवर पहने जाते हैं, जेवर 2 तरह का होता है, एक खास वह जो अमीर गरीब औरत कोई इससे खाली नहीं रहती है, मसलन नथ बिछुआ कांच की चूड़ी, दूसरा आम जेवर जो खास रुपए वाली ही पहनती हैं, मगर ख्वाहिश इसकी सबको रहती है, हिंदुस्तान की कोई औरत न होगी जिसकी जेवर की हसरत में जान न जाती होगी, चाहे तमाम दुनिया का जेवर मिले इनको इसकी हवस पूरी नहीं होती। अंग, पहले आम जेवर का जिक्र जो खामख्वाह मजहब के तौर पर बनता है। पंजाब में एक चौक जो सिर में मानिंद खूंटे के गाड़ा जाता है, इसके साथ एक परांदा अर्थात डोरी, एक मोटे रेशम की रस्सी जो पाँव की एड़ी तक लटकाई जाती है, वह सुहाग की निशानी है, कोई औरत जिसका खाविंद जीता हो इसके बगैर नहीं रहती, मैंने कभी नहीं देखा इससे किसी औरत को आराम मिलता हो, बल्कि मारे बोझ के गर्दन पीछे को लटकती रहती है, रात को सोने में बड़ी तकलीफ रहती है, मगर यह कभी जुदा नहीं करती। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि तुम्हारे वास्ते तुम्हारे खाविंद कौन सी निशानी रखते हैं। और मुझे याद आ गई, मर्दों को क्या जरूरत है जो इनके लिए तकलीफ उठावें, क्योंकि एक जोरू के मरने से बहुत मिल सकती हैं, बल्कि इनकी जिंदगी में ही, मगर इनको खाविंद के मरने से दूसरा कहाँ। अफसोस है, सुहाग का खूंटा सिर में गड़ा रहे फिर विधवा हो जावे। आपने ऐसी मजबूती से सुहाग को सिर में जमाया फिर भी उखड़ ही पड़ा। सुहाग की दुम एड़ी तक लटकाई गई फिर भी कतरी ही रह गई। चाहे कितनी ही हिफाजत से रखो, यह कभी आपसे वफा न करेगा। बस इनसे सिवाय तकलीफों के कभी आराम की उम्मीद नहीं। हिंदुस्तानी औरतें कांच की बिंदी माथे पर लगाना सुहाग में गिनती हैं। अफसोस है उनकी समझ पर, कौड़ी की बिंदी में सुहाग को दाखिल किया फिर न मालूम कांच से भी ज्यादा नाजुक क्यों हो गया। मेरे नजदीक बिंदी न लगाने वाली तुमसे ज्यादा आराम में है, और सुहाग भी उनका सूर्य की तरह कभी कम ज्यादा नहीं होता। नाक में सुराख कर गोल दायरा बना जंजीर यानी नकेल के साथ नाक में पहनना, यह भी हिंदुस्तानी औरतों की सुहाग की निशानी है। जैसे ऊंट के नाक में नकेल जितना चाहते हैं बोझ लादते हैं, जिधर चाहते हैं ले जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, खुद अपने हाथ से अपने नाक में सुराख कर बहुत बोझ उस पर लादें। अगर बोझ से टूट जाए तो डॉक्टर से सिलवाओ, अगर सीने से न जुड़े तो दोनों तरफ नाक में जंजीर से बोझ को बांधो। खूबसूरती दरकिनार, बदसूरती की खान बन जाती है। ऐ नकेल की पहनने वालियों, क्या आईने में मुंह देख के शर्म नहीं आती। अपने बदन में सुराख कर सुहाग को छिपाना चाहा, मगर फिर भी इस बेवफा सुहाग का चूर ही हो गया। अगर आप कहें कि यह सुहाग की निशानी है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि सुहागे मर्दों की भी कुछ निशानी होनी चाहिए। अगर कहो हमारे पुरखों की रस्म है, फिर मैं पूछती हूँ कौन से धर्मशास्त्र में इसका पहनना सुहाग में दाखिल है। मनुस्मृति जो हिंदुओं का आदि धर्म शास्त्र है, इसकी कौन से अध्याय में इस नाक काटने वाली का जिक्र है, और विवाह पद्धति के कौन से श्लोक में लिखा है। किसी पंडित को बुलाकर पूछ लो कि कौन सी किताब में नथ का जिक्र है। बस साफ जाहिर हो जाएगा कि यह रस्म पुरखों की बनाई नहीं, या आप ही की इजाद है। बस चाहिए कि खूबसूरत निशानी रखो, जिससे तुम्हारा सुहाग भी तुमसे खुश हो और अपना बदन भी खराब न हो। गले में कोई जेवर हो जरूर रखना चाहिए। सुहागन को कभी खाली गले न रहना चाहिए। जिसके पास जेवर न होवे, रेशम या सूत का बना कर पहने और बाहों में कांच की चूड़ी पहनना, यह भी सुहाग में है। कांच की चूड़ी कोहनी तक पहनी जाती है, कभी खाली नहीं रखती। पहनते वक्त जब पुरानी उतारती और नई पहनती हैं, तब एक चूड़ी बांह पर धर लेती हैं, ताकि बांह चूड़ी से खाली न हो। इनके ख्याल में है, अगर कांच की चूड़ी बांह में न होगी तो खाविंद मर जाएगा। गोया हिंदुस्तानी मर्दों की जिंदगी ही इनसे है। अगर यह चूड़ी न पहने तो तमाम हिंदुस्तान गर्क हो जाए। बांह इनसे कभी सफा नहीं रह सकती, पहनते वक्त भी दो चार जख्म हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में लाख की गर्मी से बांह फूल जाती है और फोड़े निकल जाते हैं, मगर यह चूड़ियों को तब भी जुदा नहीं करती। मुमकिन नहीं कि इस हालत में सुहाग तुमसे खुश रहता हो। अब मैं तुमसे सवाल करती हूँ कि जब हम में से किसी का खाविंद मरता है, तब चूड़ी उतारी जाती है। चूड़ियों में तो सुहाग न हुआ, चूड़ियों में सुहाग तब माना जाता है जब तुम उतारो कभी, तभी खाविंद मरता। पंजाबी औरतें चूड़ी नहीं पहनती, क्या उनके खाविंद मर जाते हैं। अंग्रेजों में कोई इनको जानता भी नहीं, क्या वे सब राड होती हैं। अगर कोई कहे बहुत चूड़ियों से बांह नहीं हिल सकती, थोड़ी उतार डालो, तो जवाब देती हैं हम अपने बड़ों की चाल कैसे छोड़ दें। जरा अक्ल को काम में लाओ, सोचो तुम्हारे बड़े आदमी थे या देवता, या उनकी पैदाइश किसी और तरह से हुई थी। जैसे उनके दो हाथ पांव वैसे तुम्हारे, जैसे वे अक्ल रखते थे वैसी तुम भी रखती हो। जैसे उन्होंने अपने बड़ों की अच्छी रस्म तोड़ बुरी रस्में निकाली, क्योंकि यह रस्म पुरानी किसी किताब में नहीं, न महाभारत में, न पुराणों में, न किसी स्मृति में। बस उन्होंने अपने बड़ों की चाल को तोड़ा, तुमको भी चाहिए। जो खराब दुख देने वाली रस्म है उनको तोड़ अच्छी रस्म निकालो। जब उन्होंने अपने बाप दादा की रस्मों को छोड़ दिया, तुम उनकी पैरवी न करो। जैसी उनकी अक्ल थी वैसी उन्होंने रस्म निकाली। परमेश्वर की कृपा से तुम भी अक्ल रखती हो। बस इस बदसूरत निशानी की जगह कोई खूबसूरत निशानी बनाओ जिससे तुम्हारा सुहाग भी गैर विलायत में न जावे। पांव की उंगलियों के बिछुए भी सुहाग की निशानी है। जिस दिन से शादी होती है खाविंद के मरने तक कभी पांवों से अलग नहीं करती। बहुत औरतें जिनको खाने को भी मैसर नहीं होता वे कांसे का बिछुआ पहनती हैं, और जो अमीर हैं वे एक एक बिछुआ 10-20 रुपए से कम का नहीं पहनती। जिनकी बदौलत उंगलियों का मांस गल जाता है, पहनते वक्त भी 2-4 जख्म हो जाते हैं। मैंने एक औरत को खुद देखा कि भारी बिछुओं के 22 उंगलियों में जख्म हो रहा था। बिछुओं की डंडी अंगुली में घुस गई थी। अंगुली के कटने को थोड़ा ही मांस शेष था, परंतु बिछुए नहीं उतार सकती थी क्योंकि इनके ख्याल में है बिछुए उतारेंगी तो खाविंद मर जाएगा। बस जहां कदम धरती थी खून का निशान हो जाता था। एक औरत ने पांवों को पकड़ गौर से देखा तो मालूम हुआ कि अंगुली गिरने के करीब है। 2-4 औरतों ने मिलकर सुनार को बुला, बड़ी मुश्किल से पांवों को पकड़ बिछुआ उतारा। उस बेचारी को मारे दर्द के गश आ गया। अंगुली को पानी से धोकर ऊपर कपड़ा लपेट लिया, मगर उसकी बेरहम सास देखते ही खपा हो सबको बुला कहने लगी, तुमने क्यों मेरी बहू के पांव से बिछुआ उतारा और क्यों मेरे बेटे की बदसगुनी की? चाहे बहू की अंगुली कट जाए मैं बिछुए कभी न उतारने दूंगी। तुम्हारी बात क्या है? तुम तो किरानी हो। मेरे लड़के की जान से इसका दर्द बड़ा नहीं है। जब उसका सगुन न करेगी तो मैं क्या इसे भाड़ में झोंकूंगी? संगदिल सास ने अंगुली पर से कपड़ा उतार फिर बिछुआ पहना दिया। बेवकूफ औरतें यह नहीं समझती कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़का किसके सगुन करने से जीता रहता है। जब औरत मर जाती है तो कौन इनके जीने का सगुन करता है? अगर इन्हीं में सुहाग है तो चाहिए औरत के साथ खाबिंद भी मर जाए। गोया इनका जिलाना मरना इनकी औरतों के पाँव में है। फिर सास ने यह न सोचा कि जब अंगुली कट जाएगी तो बिछुए क्या नाक में पहनेगी। पाँव के अंगूठे में एक अनबट नामी जेवर होता है जिसके नीचे पाँव अंगुल की कील छोटी अंगुली तक नीचे की तरफ रहती है। इसी जेवर से कई औरतों ने खून भी किए हैं। बड़े शर्म की बात है कि इस कदर तकलीफ उठावे फिर तुम्हारा सुहाग भी तुमसे खुश न रहे। अफसोस बिछुए अंगुलियों में रहें और सुहाग मर जाए। ऐ सुहाग का सगुन करने वालियों, सुहाग इनमें नहीं लेकिन इनसे मर सकता है अगर कभी लग जाए तो। अगर कहो कि यह सुहाग की निशानी है, मेरी दस्तबस्ता आपसे अर्ज है कि कोई खूबसूरत निशानी रखो जिससे तुम्हारे आराम भी फर्क न आवे और सुहाग भी न मारा मारा फिरे। अगर कहो कि हमारे बाप दादा की रस्म है, नहीं यह बेड़ियाँ आपकी ही इजाद की हैं। खूब याद रखो, जब तक खुद इन बेड़ियों को न उतारोगी चाहे हिंदुस्तानी विलायत में तालीम पावे कभी शायस्ता नहीं बन सकते। देखो जो औरतें बिछुए नहीं पहनती उनका सुहाग गुलामों की तरह उनका फरमा बरदार रहता है, कभी सुहाग दूर हो ही नहीं सकता। एक के मरने से फौरन दूसरी शादी कर सकती हैं। तुमने इस तरह अपने बदन में सुहाग को जगह जगह छिपाया, मगर अफसोस फिर भी एक खाविंद के मरने से सारी उम्र रोना पड़ा। बस अब इन जेवरों से निकालकर सुहाग को दिल में जगह दो ताकि सुहाग दूसरी जगह न जावे।